ीरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनयदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् कृष्ण तवैवास्मि तवैवास्मि इति जिज्ञासे तं मुनिमान् सर्वप्रथमे अस्मदीय परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति प्रज्ञान के स्वामी महाराज जी के चरणों का चरण कमलों में साष्टांग दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु शिष्य भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल और अपने शिक्षा गुरु श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडवत पुष्पांजलि अर्पित करते। तत्पश्चात आदरणीय त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवीगण सज्जनगण आज हमारी परिक्रमा समुद्रगढ़ चंपकहट्ट और फिर विद्यानगर होकर के ऋतु दीप होकर के यहाँ एखाने के उपस्थित हुए समुद्रगढ़ कथा ओखाने अपनारा श्रवण करे कोल द्वीपर अंतर्गत सेठी सेठी समुद्र गढ़ी समुद्र शेखाने ऐसे गंगा पर्यंत महाप्रभु लीला दर्शन करते और गंगा के बोलने तुम्हें परम सौभाग्यवती जे तुम्हारे उपकूले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र गौर रूपे थे तिनी एखने ते लीला विलास कर गंगा देवी बोलें शीघ्र ही तिनी संन्यास निये तुम्हारे ओखाने जाबे और ओखाने ते तुम्हार समुद्र उपकूले थे बहुविध विरह मई लीला के नित प्रकाश कर दे तो समुद्र गंगा समुद्र गढ़ी थे ऐसे तहार दर्शन करते और समुद्र से ने संबंध है सुने चैन भीम से ने संबंध है भीम भगवान एकांतिक भक्त लिए पर प्राचीन भक्त समुद्र से पर्वती काल आराध्य भीमसेन द्वारका कृष्ण परिकर समुद्र से नवद्वीपे थे महाप्रभु परिकर अपना देखो गुरु जैसे कई कार भक्ति से। अतएव समुद्र से पाद पद्म नित्य लीला भक्त लोग भीमसेन मध्य में कृष्ण ओम विष्णु पाद से ओखाने ते दर्शन करे से समस्त कथा ओखाने ते रसानंद प्रभु इत्यादि मन भक्ति प्रज्ञान के सबूत आर के
श्री कृष्ण प्रभु
वन महाराज सुलस दूटे पार्टी तो करिए दिए महाराज जी के चरण कर यही सब कथा बेस रोचक ओखान हो समय ते आमी अत्र विक्रम महाराज जे चरण कमलों में षष्टांग हो तो जनार्दन महाराज माछ खाने थी के मेट माट कर देते अद्भुत कथा से ही समस्त होता ভীম বলবান তার ভক্ত
বলছে দ্বারকায় বলবান নবদীয় বলবান
না। তারপরে আপনারা চম্পক হট্টেতে আসলেন, সেখানেতে জয়দেব গোস্বামী অদ্ভুত ভক্তির কথা শ্রবণ করে থাকবেন। জয়দেব গোস্বামী ওখানে গীতগোবিন্দ লিখছিলেন, লিখবার সময় তার ভাবেতে আসলো রাধারানী মান করেছেন, আর সেই মানকে দূর করবার জন্য কৃষ্ণ তিনি কিরকম ভাবে তাহার পদানত হয়েছেন তার মুরলী চরণেতে রেখে দিয়ে কি বলছেন, স্বর্গর লখণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেই পদপল্লম। কিন্তু লিখতে পারবেন না, কৃষ্ণ সমস্ত ভগবানের ও ভগবান, রাধারানী তাহার সেবিকা, আর তাহার চরণীতে তিনি মস্তক দিবেন এটা তো অসম্ভব কথা। এই জন্য মাঝখানে তাহার পুস্তক বন্ধ করে দিয়ে আর গঙ্গা স্নানে চলে গিয়েছে। ওখান থেকে গঙ্গা নিকটে এক দু মাইল ওখানে গিয়েছেন, আর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ তাহার রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাহার স্ত্রীকে বললেন, আমার একটি কথা মনে পড়ে গিয়েছে, তুমি বইটা নিয়ে আসো আমি একটা লিখে দিয়ে যাই। সে বই এনে দিয়েছে আর সেটি লিখে দিয়েছে নিজে হাতে, স্মর গর লখণ্ডন মম শির সিদ্ধার্থ দেই মম পদ্ম পল্লবম, নিজে হাতেতে স্বর্ণাক্ষরেতে লিখে দিয়েছে। কুক্ষণ পরে কৃষ্ণ জয়দেব গোস্বামী স্বয়ং স্নান করে এসেছেন, বলি অত তাড়াতাড়ি করে তুমি কিরকম স্নান করে আসলে, মাঝখানে তো এসে কি একটা লিখে দিয়ে গিয়েছ আবার ফের এসে চট করে? ও আমি আসি নাই তো, কে এসেছিল বইটা নিয়ে এসো দেখি। দেখেন যে সে এই পদটা লিখা আছে, তখন তিনি ক্রন্দন করতে করতে লাগলেন, আমার এখানে সন্দেহ ছিল আর আপনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করে দিয়ে আর আপনি স্বয়ং লিখেছেন স্বর্ণাক্ষরেতে একেবারে লিখে দিয়েছে। তখন তার স্ত্রী স্বর্ণেতে পড়েছিল, তুমি পরমেশ্বর ভাগবতী তুমি কৃষ্ণকে দর্শন করলে, আমি করতে পারি না। অঝোর নেত্রেতে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপরে মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে তিনি আবার চলে গেলেন জগন্নাথপুর, গীত গোবিন্দের পথ কৃষ্ণ শ্রবণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। জগন্নাথপুরীতে একবার কোন দেবদাসী এই গান করতে ছিল, তখন জগন্নাথ দেব ঘরের সব কপাট খুলিয়ে, অদ্ভুত কপাট সব তালা বন্ধ, সে খুলে দিয়ে
আর দৌড়িয়েছেন আর কাঁটাতে কুঞ্জেতে করিল কাঁটা, তাহার অঙ্গেতে খরচ লেগে গিয়েছে, কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, তথাপি দৌড়ে গিয়েছে। শ্রমণ করে আবার ফের সকালবেলা পূজারি দেখে যে তাহার অঙ্গেতে সবগুলি খরচ
ক্ষতবিক্ষত,
ক্ষতবিক্ষত দেখলেন, কাপড় ছেঁড়া দেখলেন, কে আসলো? তখন জগন্নাথদের স্বপ্নে জানাইলেন যে আমি গিয়েছিলাম দেবী। আর একদিন মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন টোটা গোপীনাথে, সেইখানে একটা দেবদাসী এই পদ কীর্তন করতেছিল, জয় জয় দেব হরে শীত কমলাকুচ মণ্ডল ধৃত মণ্ডলে ধৃত মণ্ডলে ফলিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে। এর প্রতি পদ রাধার সঙ্গে সম্বন্ধিত আছে আর অদ্ভুত রসযুক্ত। সেই মহাপ্রভু নিজেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, দৌড়লেন তাহাকে ধরতে, আলিঙ্গন করতে। গোবিন্দ দেখল যে সে যদি তাহাকে স্পর্শ করেন তাহলে তো সমুদ্রের মধ্যে লাভ দিয়ে মরবেন না কি হবে, দৌড়ে দৌড়ে ধরতে পারে না। তখন বলল যে সে মেয়ে লোক গান করছে, তখন শান্ত হয়ে গেলেন, নিকটে গিয়ে আর তাকে স্পর্শ বলেছে সে তুমি গোবিন্দ আজকে রক্ষা করবে, যদি আমি স্পর্শ করতাম তাহলে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আমি প্রাণ দিতাম। এই যে জয়দেবের গীত গোবিন্দ অদ্ভুত, কৃষ্ণ কৃষ্ণের কর্ণে কে অত্যন্ত রসায়ন, রাধারণী মহিমা যুক্ত এই পদ।
জগন্নাথের মন্দিরে আর বাইরে রাত্রে কই কীর্তন করতে পারে,
রাত্রেতে কেউ আশপাশে আর কীর্তন করতে দেয় না, জগন্নাথ বেরিয়ে যাবে
রাত্রে, জগন্নাথ মন্দিরে হয় প্রতিদিন।
তারপরে তিনি এইখানে জয়দেব মহাপ্রভুর দর্শন পেয়েছিলেন, আর জগন্নাথ দেব যেতে চান নাই জগন্নাথ পুরীতে, মহাপ্রভু বললেন যে সে তুমি যাও ওখানে আমার লীলা আরো সব দেখবে, তখন তাহাকে পাঠান ওখানে গিয়েছে। আরো পদাবলী সব লিখেন, উড়িষাতে সর্বত্র তাহার গীত গোবিন্দ প্রচারিত আছে, আর ওখানকার লোক এইসব পদাবলী সবটা অদ্ভুত স্বরেতে গান করে। তারপরে আপনারা বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন, ওখানকার কথা সবগুলি শুনলেন, সব বিদ্যা যে মূল পুরুষরা ওখানে গিয়েছে আর ওইখান থেকে শিখে তারপরে সর্বত্র গিয়েছে। মহাপ্রভু ওখানেতে যেতেন, তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বিশারদ, কি
মহেশ্বর
বিশারদ, মহাপ্রভু ওখানেতে যেতেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান সেটি, সার্বভৌম কিরকম ছিলেন যখন ওখানে ছিলেন, তখন মিথিলাতে গিয়েছিলেন নব্যের ন্যায় শিখবার জন্য, যখন শিখা হয়ে গেল তখন ওখানকার বইগুলি নিয়ে আসতে চান, ওরা জেনে সব বইগুলিকে আটকে দেয়, নিয়ে ছিনে দিল। তখন তিনি ওখান থেকে বেরিয়েই আবার সেটি স্মৃতিতে সমস্ত গ্রন্থগুলিকে লিখে দিলেন, আর নিয়ে এসে নদীপেতে নব্য ন্যায় আরম্ভ হল। আর পৃথিবীতে কোনো জায়গাতে নব্য ন্যায় নবদ্বীপের মতো নাই, মিথিলা থেকে এইখানে চলে আসে। তো এইসবগুলি কথা হয়েছে আজকে। সবিতা ইয়া হ্যায় সবিতা, আও তো দু চার কথা বলো। সত্যা ইজ কামিং,
না আপনি যে বলেন ইংরেজি অনুবাদ হবে তো,
ও ঠিক আচ্ছা দু মিনিট বাদ। ইসকে বাদ মে মধু বলে, হ্যাঁ মধু হ্যাঁ অচ্ছি বলে। মহাপ্রভু কা বৈশিষ্ট্য,
গোবিন্দ Sunday, by the mercy of Sri Guru Gauranga, we visited the holy places of Samudra, Champakbhar, then coming back through Vidyanagara to the island of Rishadweep, we returned back here. There in Samudra, the ocean who is the husband of all the rivers, said to the Ganga, "O Ganga Devi, you are most fortunate, because the Supreme Personality of Godhead, Sri Bhagavan, Sri Gaura Sundar, he will perform, take bath and perform leelas in you." Then Ganga also replied to the ocean, "You will also be fortunate, because when Gauranga Mahaprabhu takes a nyas and goes from Nalavik, he will go towards the bank of the ocean and he will perform many astonishing leelas full of fluid separation there on your bank." There also was the astonishing katha between Samudra Sen and Bhim Sen. Bhim Sen is a very old devotee, a parika, an associate of Dwarka. And Samudra Sen is a parika of Sri Navadip Dham. There, by the mercy of Bhim Sen, Samudra Sen had darshan of Krishna. And there is a very astonishing katha. The Guru said he's remembering when himself, Sri Chukka Maharaj, Sri Puttaparajanan Maharaj would have all type of discussion there. Then we went to Champak Bhatta. There is the place of Sri Jayadev Goswami. There he composed Sri Deep Govinda. And there, in Deep Govinda, he was describing Radharani's very Gurujari mind, her very strong mood of mind towards Krishna. In his meditation, he saw that Krishna, in order to break the mind of Radhika, was offering his fruit, offering his peacock feather, offering his pitamba. But finally, he offered his head at the feet of Radharani. And Sri Jaya Goswami hesitated. Krishna is Bhagavan, Sarvashaktiman, the possessor of all potencies. How is it possible that his potency, Radha, will put her feet upon his head? Therefore he closed the book and he went to cool his head by taking bath in the Ganga. Meanwhile, Krishna himself came in the form of Jayadev and said to Padma, the wife of Jayadev, "Oh, I want to finish writing in that book. Therefore bring my book." And in golden letters, Krishna completed the verse, "Smaragara Kandanam, Sirisimani, Sirisimani, Kandanam, Dehi, Padapalam, Udharam." When Krishna left, then again Jayadev Goswami came. Then his wife Padma asked, "You are coming, going, why? You just went a minute ago, you came back, you brought something. Now again you left, now again you're coming." Then Jayadev Goswami said, "No, Devi, I don't know anything, not the same." Then he saw the writing of Krishna, he began weeping. "I had a doubt, but Krishna, you cleared that doubt with your own hand." Therefore Jayadev Goswami fell at the feet of Padma, saying, "You are fortunate, you have darshan of Krishna. I could not get that good fortune." Then on the desire of Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip and went to Jagannath Puri after writing his Govinda. There one night, when Jagannath Dev was hearing the composition of his Govinda, he became restless and he opened the doors of the temple and ran there to hear. As he ran, the various thorns scratched his body and his cloth. In the morning, Pujari could see the scratches on the mark of Jagannath, and he became filled with bewilderment. But Jagannath appeared in his dream and explained the situation. Kali Pala Lita Banaman, how deep Govinda is filled with the glories of Srimati Radhika in a hidden way. Therefore, when Srimati Mahaprabhu also heard that deep Govinda, he also ran towards the thorns to embrace the singer. And Govinda said, "Oh Mahaprabhu, it's a woman." Then Mahaprabhu controlled himself and said to Govinda, "Oh Govinda, you saved my life. If I had embraced a woman, I would have had to commit suicide by giving up my life in the ocean." Therefore, this deep Govinda is a Rasayan, a meditating tonic. It is filled with the glory of Srimati Radhika. Therefore, even today, at night time, no one is able to sing deep Govinda within the precincts of Jagannath Temple, due to fear that Jagannath may run again. Jaya Goswami also had Dasha Chaitanya Mahaprabhu there in Jagannath Puri. Therefore, he Govind is so much famous, even today in Orissa, his kirtans, his padyavali is sung and preached everywhere. Then we went to Vidyanagar. That is the place of Sarvabhauma Bhattacharya and also the friend of Jagannath Mishra there, Maheshwara Visaya. There Sarvabhauma Bhattacharya composes Navya Naya, his new thesis on logic and argument. So today we went to all those places. Go
Shabita. चैतन्य महाप्रभु के वैशिष्ट, उनकी शिक्षा, उनका अवदान,
जब भाव को उन्होंने ले लिया राधा जी समझ गए सुन करके पृथ्वी पर गिरती थी तो मैं सहन कर लेती थी उस पृथ्वी की चोट को। प्रेरणा तो बहुत ही कोमल है, उसको भाव को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही अंत क्रांति से अपने प्रेरणा से अंत क्रांति को ढक लिया। क्यों? क्योंकि जब वे मेरे भाव को आस्वादन करके हार्सी मां पूजा इत्यादि भावों का आस्वादन करेंगे और पृथ्वी पर प्रचार खाकर गिरेंगे तो उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए अंत क्रांति के रूप में वह श्री विश्वान बन रहे हैं। पहले की प्राण रक्षा करने के लिए शरीर से निभा दें, इसलिए गौर सुंदर की बहुत क्रांतियों के और नाम धराया बहुत। उसी समय जिस समय महाप्रभु पृथ्वी पर आविर्भूत होने वाले थे, परिक्रमा आए साधना के वैश्य दुष्प्रणाम यह भी एक कारण प्रतीत हो रहा था। तीसरा कारण था कि प्राय जगत में शुद्ध भक्ति लुप्त हो रही थी। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, गुणी होता, प्राधान्य होता इत्यादि भक्ति के द्वारा प्रभु की आराधना की जा रही थी। इसे देखकर महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य को बड़ा कष्ट हो रहा था। उन्होंने अपने प्राणनाथ की, अपने आराध्य देव की तुलसी और गंगा जल से आराधना करके भुलाने के बाद भुला रहे थे, अर्थात उपासना कर रहे थे। यह तीसरा कारण था। और चौथा कारण मुझे बताते हैं, अनंत की शरीर की याद करने और किए गलत समय पर सुन सद्य प्रशांत सौभाग्य हरी पूर्ण सुंदर दिव्य कदम संगीतता सदा हृदय करने पूरी तरह सची नंदन। जो शुद्ध भक्ति विमुक्त हो चुकी थी, ये क्रिया श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चैतन्य की व्याख्या में लिखा है। शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति में भी गगन भूपाल और भक्ति के भक्तों को ही शुद्ध भक्त कहा गया है। शुद्ध भक्ति प्राय लुप्त हो चुकी थी। महाप्रभु से पूर्व पूर्व आए इस धराधाम में विष्णु स्वामी, निम्बाजित, मध्वाचार्य इत्यादि आए, उन्होंने भी भक्ति का प्रचार किया। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रचार और आस्वादन किया वह अनपढ़ जीने और अपूर्व था उनका। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण में कर्म होने के कारण ब्रज रस भक्ति का उन्होंने प्रचार और आस्वादन किया। प्रचार पहले तो महाप्रभु ने कैसे इस धारा में हम लोग आज जो इस पके हुए फल को खा रहे हैं, कैसे खाए हम लोग, गुरु जी ने बार बार अपनी कथा में कहते हैं महाप्रभु की 48 साल की लीला जिसमें 24 साल व्रत लीला, 24 साल संन्यास लीला। संन्यास लीला में भी 24 साल में 6 साल का उनका गमनागमन लीला हुई, अर्थात दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए इत्यादि गमनागमन लीला का आस्वादन किया। और 18 वर्षों तक गंभीरा में बैठकर राधा जी के भावों का आस्वादन किया। रात्रि भर वे उस भावों का आस्वादन करते थे। उन भावों के आस्वादन की सांत्वना के लिए श्री रायरामानंद और श्री स्वरूप दामोदर उनको सांत्वना देते थे। स्वरूप दामोदर के पास में हमारे सब गोस्वामी अंतर्गत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहा करते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी पूरे रात प्रतीक्षा में रहते थे कि मेरे गुरुदेव आदि होंगे। कोई पत्ता भी काटता था तो समझते थे गुरुजी आ गए हैं। क्यों ऐसी प्रतीक्षा करते थे? क्योंकि उत्कंठा पूर्वक बैठे रहते थे कि आज महाप्रभु ने कौन से भाव का आस्वादन किया, कौन से भाव में दिखा दिए थे, आपने किस किस भावों के कारण किन किन श्लोकों से उनको सांत्वना दी। सुनने के लिए उत्कंठित बैठे रहते थे। जब की मैं इस जिस भक्ति को लेकर आज स्वागत कर रहा हूँ उसका भी मुझे प्रचार मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग गोस्वामियों के द्वारा अलग अलग भावों को इस तरह कराया, जैसे वैदिक भक्ति सनातन गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित कराई, नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी से कराई, और आध्यात्मिक और भक्ति रूपाणी का भक्ति जागरण और भक्ति का प्रचार प्रसारण श्री रूप गोस्वामी जी से कराया। रूप गोस्वामी जी को भी अपने सारे भावों को संचलित करके रूप गोस्वामी जी के द्वारा आज इस फल को हम लोग खा रहे हैं, स्थापित कराया इस धाराधाम में। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के भावों को ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुँचाया है। उन्हीं भावों को रघुनाथदास गोस्वामी जी ने कैसे आस्वादन किया जा सकता है, एक भक्त कैसे इन भावों को आस्वादन कर सकता है, सारा उन्होंने उपाय अपने ग्रंथों में बताया है। विशेषकर इस कवावली में रघुनाथदास गोस्वामी जी ने इस सब मालों में रूप गोस्वामी जी ने इस कवावली में रघु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया है। अगर हम लोग इन महाप्रभु के वास्तव में भाव को चाहते हैं, शुद्ध भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं, तो बड़ा सुंदर उपाय बताया। क्या बताया? आदर श्रद्धा। सबसे पहले हम लोग साधु और वैष्णवों के मुख से कथा सुनते हैं और उन कथाओं को सुनकर सुनाने वाले की प्रति श्रद्धा होती है। सुनते सुनते फिर क्या होता है? गुरु पर आश्रय करते हैं। गुरु पर आश्रय, अगर आज गुरुदेव इस धाराधाम में नहीं आते, हम कैसे जानते कि महाप्रभु नदी से करम करुण है? शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं? विशुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, जीव तत्व किसको कहते हैं? हम कैसे समझ पाते अपने गुरु पर आश्रय करके, गुरु वैष्णव के चरणों में सब कुछ समर्पित करके, निष्कपट रूप में जितने हम लोग समर्पित होंगे उतने ही उनकी निष्कपट रूप में हम लोगों के हृदय में भक्ति संचरित होती होगी। यह एक सिद्धांत है कि हम जितने हम लोग सोचते हैं भक्ति क्यों नहीं होगी, इतने दिन से भक्त हरिनाम करते हैं, गरिमा करते हैं, कभी हृदय दर्दित नहीं होता, आप हमें आंसू नहीं आते, हम कभी समझते नहीं कि गुरु जी के चरणों के हम ऋणिया है। क्यों? क्योंकि निष्कपट होकर उनकी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए उनके अनुग्रही नहीं कहलाते हैं हम लोग। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अपने जैसे वंशी खोपड़ी होती है, ऐसे ही गुरु वैष्णव के चरणों में निष्कपट रूप में यदि जितने हम लोग जितने प्रतिशत में उनके चरणों में आत्मसमर्पित होंगे, वह अपने आप ही भक्ति हम लोगों के हृदय में संचरित कर देंगे। इसलिए गुरु पर आश्रय करके भजन क्रिया, गुरुदेव जब हम लोगों को दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान प्रदाति की दीक्षा, अर्थात जिस ज्ञान में है यहाँ पर हम लोगों का संबंध जो जन्म जन्मांतर से छूटा आ रहा है, जन्म जन्मांतर से जो ढक गया है हमारा संबंध, उसको गुरुदेव दीक्षा के द्वारा मंत्रों के द्वारा उस संबंध को स्थापित कर देते हैं और उस संबंध को बता देते हैं। हमारे बड़े विष्णुओं का संबंध है मनीषा नाथक से प्रतिपेड़ संगम, हमारी विष्णुमान नंदनी ही आराध्या है, हमारी विष्णुमान नंदनी राधा रानी ही हमारी हृदयश्वरी है, वही हमारी एकमात्र आराध्य है। उनके जो प्राण प्रीतम राधा समर्थ है राजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, हमारे श्री विष्णुमान नंदनी के प्रियतम है, ऐसा भी संबंध दीक्षा के माध्यम
Dandi Maharaj, will you speak? about the glory of Chaitanya Mahaprabhu, his teaching and other things. Chidandi Maharaj. What name?
Tridandi.
I told Tridandi.
I first of all offer thousands and thousands of thunderous pranams on the lotus feet of my beloved Guru. Om Vishnu Pada Paramahamsa Pariyarika Chaja Asau Vaisar Shishina Shri Bhakti Vedanta Narayana Vaswami Maharaj. And again, millions of times, on the lotus feet of our beloved Nitya Lila, Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Pariyarika Chaja Asau Vaisar Shishina Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. And all the assembled Vaishnava and Vaishnava devotees of the Lord, Dandava Pranam. Sri Satchinandana Gaudahari Ki Jai! So we have been hearing for many, many days the very sublime and sweet descriptions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pastimes. In a couple of days from now, we will celebrate the Divine Appearance Day of this extraordinary personality. Once in a day, our Lord Brahma, once every 4,320,000,000 years, this personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu, advents to show us how to develop our natural affection and attraction to Krishna, which we have forgotten for so many lifetimes. So Krishna comes 5,000 years ago. Always Mahaprabhu advents 5,000 years later to teach us and show us how to serve Krishna. When Krishna manifested his pastimes, it was not common knowledge, it was not understood clearly. What is Parakya Bhava, what is Svakya Bhava, what is Rasa Kleri, until the advent of Mahaprabhu and his eternal associates came to expose and explain and describe the wonder of Krishna's pastimes. So 500 years ago, in Navadvipa, Jagannath Mishra, he had a wonderful dream. He dreamt that the abode of the Lord entered his heart. He was describing to Sakshi Mata. And Sakshi Mata also, she was explaining to Jagannath Mishra, I am seeing many celestial beings offering me Dandavat Pranam. And Jagannath Mishra was explaining, I am seeing your whole body very effulgent. They both understood at this time that a very special personality was manifesting in the womb of Sakshi Mata. Previously, Sakshi Mata had 8 daughters and they all died. And then they had one son, Vishwarup. They were so satisfied and pleased with this. But then Chaitanya Mahaprabhu, he remained in the womb of Sakshi Mata for 13 months. Generally 10 months, 9 months is the estimated time when a child will remain in the womb. So Jagannath Mishra and Sakshi Mata became a little worried, disturbed. But it's described how Chaitanya Mahaprabhu was waiting for a very auspicious time. And at that most auspicious time, Providence provided a lunar eclipse. It was understood that only one moon should be illuminating the universe at the time of Mahaprabhu's advent. So So Rahu, he covered the moon that we see in the sky, and the most effulgent moon of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arose 500 years ago. And at that time, all of the brahmanas, all of the worshippers of Vedic literature, they were chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. The whole of Navadvip Dham, the whole of Bharatvash, the whole world, anywhere where there were devotees, they were all chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Even it's described in Muslims, they were imitating the non-devotees, they were imitating the devotees chanting. So when Mahaprabhu advented, the whole world was luminous with the sound of Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So Mahaprabhu advented in this very auspicious atmosphere of the chanting of the holy name. And then we have heard so many of his childhood pastimes from the lotus feet of Sri Gurudev. He's described how, when he was a child, how he would cry until the Brahmin ladies, they would chant, Hare Krishna, Hare Krishna. And then when he was very, very small, even 5, 6 days old, it was described how all the Brahmin wives, the celestial beings also, they were coming and offering pranam to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during his pastimes in Navadvip, these very, very sweet pastimes, we see him going through the mood of a scholar, how he was such an erudite scholar, how he defeated Keshava Kashmiri. And very beautifully, Gurudev described the other night how in that debate Mahaprabhu showed his erudite personality. But then on visiting his guru in Ishwarapuri, in Gaya, then he returned in a much more sober mood. And then more of a devotional sentiment was expressed by him. But this time, Mahaprabhu, even though endowed with the Kanti and the bars of Srimati Radhika, still was not actually tasting that mood until he came to the Godavari River with Rai Ramananda this discussion, Rai Ramananda Samvada at that time. So up until this point, his complete tasting of these three very special reasons for his advent was not manifest. But nevertheless, at that time in Navadvip, so much madhurya, so much sweetness was being demonstrated by Mahaprabhu in his childhood pastimes, and then after with Ishwarapuri, when he was chanting with the devotees in Srivastavam, the very wonderful kirtans that were taking place. This is described as not different to the Rasa Lila in Vrindavan. So Mahaprabhu, he was demonstrating throughout his entire life devotion and attraction to Krishna in the form himself as a devotee. This is most extraordinary. If we describe any of these teachings to a non-devotee, they must become attractive. These features of Mahaprabhu's life are so attractive to all people of this world. It's described that within the heart of the jiva, ashakti, or attraction to Krishna, is latently there. It's residing in the heart of all jivas. But yet to manifest this, to awaken this ashakti, Mahaprabhu has advented for his own personal reasons, Sri Radhaya Pranaya Mahima, the greatness of Radharani's qualities he wanted to taste, Svadhyena Bhuta, Kivrisham Madhya, that the Madhurima, the great qualities in Srimati Radharani, he also wanted to taste, and the happiness that Radharani experienced from Krishna's own love for her. These so profound reasons that Krishna himself was manifesting to taste his own sweetness will confound any jiva in this world. So this is the greatness of Mahaprabhu's manifestation, completely attracting all jivas to the path of wakening up their natural relationship of service to Radha and Krishna. So Mahaprabhu, in his pastimes in Navadvip, was so exceptionally sweet and beautiful, especially in Srivastavam, these pastimes. Srivastava and all the devotees, Advaita Acharya, Mukunda, Haridas, Nityananda Prabhu, all these personalities were dancing every night, the most remarkable exchanges of loving affection. Mahaprabhu sometimes would take the form of Vishnu completely, Narayana, and he'd clear Srivas's altar and take his seat there and demand wine from Nityananda Prabhu and take his a mood of Aishwarya, and the devotees would become very intimidated by these moods. And Mahaprabhu at that time, he would give so much mercy to the devotees there. Other times he would be trying to grab the dust from their lotus feet, and he would be so much in a mood of humility. We see that in his final pastimes in Puridham, many, many years later, 24 years later, when he gave his only instruction in the Shikshastikam, how his moods of humility were so profound. We see in the first two verses of his Shikshastikam how he's explaining so many tattvas and siddhantas, and then finally this Trinalapi Sunishena, he's demonstrating this mood of humility, and throughout his life he's showing these moods in his desire to taste Radharani's moods. So Mahaprabhu, this very significant quality of humility, Mahaprabhu was demonstrating himself. He's Krishna himself, he's the Lord himself, the Lord of all himself, the Supreme Personality of Godhead. And yet he's demonstrating the most humble mood as a sadhu, as a devotee, for us to try and imbibe these moods. If the devotee can hear and can try and emulate or follow these moods of deep humility, understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, I am not the Supreme Enjoyer, that Krishna is the Enjoyer. Just now, Savita, she was speaking very beautifully about the difficulties we have in our practice, why we're not weeping when we're chanting Hare Krishna, why we're not experiencing ecstatic symptoms. And she's describing how our offenses, and these offenses manifest from not being able to sufficiently understand my insignificance in relationship to Krishna and Krishna's devotees. If the devotee can somehow or other catch up this mood, then his life can be successful and he can hear this sublime holy name that Mahaprabhu came to give to the jivas. Mahaprabhu gave so much every moment of his life, just like the radiant sun is constantly pouring down its mercy day after day. Mahaprabhu is like a million suns. The mercy Mahaprabhu is demonstrating is more than this earthly sun. Every day, our difficulty is our own container has holes in it, and our process is to block up the holes and eventually be able to retain these divine teachings in our heart that Srila Gurudev is giving us as the complete medium to Sri Mahaprabhu. So when we sit here in front of our beloved Gurudev, we understand that he is reflecting all of Mahaprabhu's mercy directly into our hearts. So on these days we are feeling so much indebted, deep gratitude to this personality of our Gurudev, who is holding and containing this and just distributing it in exactly the same way as Krishna himself was. Krishna was giving so much mercy through his devotees. When Mahaprabhu, he only gave these eight Shikshastika instructions, but Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, we were just hearing, all these personalities, Srila Vishnuacharya Thakur, Baladevi Vibhushan, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Srila Gurudev, Srila Bhakti Vinod Swami Prabhupada, all the same mood of just giving, exactly like the brilliant golden sun. This giving of pure affection for each other, Gurudev has been describing for so many years. And our relationship with each other also must be in tune with this mood. If we can, this will break our critical mentality. It's described that the nature of a materialist is his envy. So the nature of a transcendentalist is opposite to that. It's his affection for each other. So if we can develop these modes of affection individually even in this world, then surely this will purify our envious mentality. And at some point we'll begin to understand the deeper concepts that Srimad Mahaprabhu came to give and demonstrate through his whole entire life in the Gambhira, his pastimes with Swarup Damodar and Rai Ramananda are breathtaking for the devotees to listen to and hear about. And the his mood of complete humility are shown so strongly, prominently through his whole life. So at this time on Navadvip Parikrama, we are praying deeply for a little particle of these moods to be reflected from Srila Gurudev into our hearts so that we will understand these topics more fully and one day pray to be able to weep when we chant, to experience these, this attraction to Radha and Krishna as is our birthright. Srila Gurudev ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Satchinandana Gaudahari ki jai.
इसके बाद बहुत अच्छा, वेरी गुड. इसके बाद में बेटी मधु महाप्रभु जी के वैशिष्ट और उनकी शिक्षाओं के संबंध में प्रकाश डालेगी. माइक के सामने बोलो, माइक के सामने.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर खुशे नम. हे कृष्ण कर्मणा सिंधु दीन भरपूर रखते योगेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुति देवी प्रणमामि हरि श्री. सबसे पहले मैं अस्मदीय गुरुदेव पादपद्म ओम विष्णुपाद अष्टोदशशील ब्रह्मचर्यधाम श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणारविंदों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम से पुष्पांजलि निवेदित करती हूँ. गौर दत्त और गुरु दत्त, गौर दत्त राधा भागवती सुबले और राधा जी की प्रणय महिमा इत्यादि की जो बातें हमने सुनी मैं उसके आगे चल रही हूँ. श्री गुरुदेव कोई भी गुरु जिनके भी जो गुरु हैं वो अलग बात है कि गुरु कैसे होने चाहिए, दैट इज डिफरेंट पॉइंट. जो श्री गुरुदेव हैं वो श्री राधा जी के चरणों की जो नख की छटा है उससे आविर्भूत होकर पृथ्वी पर आते हैं और श्री गौर वो राधा जी के भाव को लेकर आते हैं. तो महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वही श्री गुरुदेव के माध्यम से हम तक संचरित होती रहती है. श्रीमद महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे. राधा प्रणय महिमा का जो ज्ञान है वो उनका वयस्क भी कहा जा सकता है, लेकिन जो समष्टि रूप में उन्होंने काम किया वो भी हमारे लिए विचारणीय है. उस समय यदि साधु सन्यासी परमहंस इत्यादि की जो तरुण से जो डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, वो बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि महाप्रभु जी करुणा के अवतार हैं और दान और माधुर्य से सरोवर हैं. तो कलयुग के जीव मायावाद और सच्चे सन्यासी को समझ नहीं पाएंगे. कलयुग का इसकी भी शिक्षाएं उन्होंने अपने विभिन्न परिकरों के माध्यम से दी। श्रीमद महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी उनमें सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में अर्चन और कलयुग में संकीर्तन, इसकी शिक्षा देने वो यहाँ पर आए। संकीर्तन से जो नाम उच्चरित हो रहा है तो हमारे सबके हृदय में जो विषय वासना रूपी हाथी समाया हुआ है और बाहरी जगत में जो चकाचौंध हम देख रहे हैं और उसकी माया से हम आवृत हो रहे हैं, तो महाप्रभु का संकीर्तन ही ऐसा अस्त्र है जो हमारे हृदय के इन सब हाथियों को और बाहरी मायावाद और झंझाल का छेदन कर पाता है। महाप्रभु जी ने साधारण जीवों को नाम संकीर्तन और उस नाम संकीर्तन की स्थिति बताई। स्वामी हरिदास ठाकुर उनको अग्नि स्थिति में भजन करवाया। रूप गोस्वामी, शिवा सनातन गोस्वामी, रघुनाथदास गोस्वामी को भजन की शिक्षा अलग प्रकार से दी। श्रीमद महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है उसने अस्त्र का काम किया, क्योंकि तो संपूर्ण अवतारों में भगवान जब भी अवतार लिए तो उनके हाथ में अस्त्र होता है, लेकिन श्रीमद महाप्रभु बिना किसी अस्त्र के इस धरती पर आए थे और नाम संकीर्तन ने उनको पूरे विश्व में उन्होंने डुबा दिया था। और जिस तरह से एक शुद्ध रूप से सबके हृदय में नाम डाला था, सारा विश्व उसमें समा गया। आज भी उन्हीं के नाम महिमा से हम सब लोग अपने हृदय का शोधन कर रहे हैं। श्रीनगरी धाम जहाँ महाप्रभु ने अवतार लिया वो हमारे हृदय के गुरु भावों का परिमार्जन करती है। कल हम परसों हम जगन्नाथ बाबा जी के मंदिर में गए थे, वहाँ 105 वर्ष के संत रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जो भाव भक्ति है वो किस प्रकार से वस्तु सिद्धि और वस्तु उपलब्धि के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने महाप्रभु जी की बदलना बताई कि भागवत परंपरा में जो हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज का भजन है, जब वो वृंदावन में भजन कर रहे थे तो वहाँ से एक स्त्री गई जिसके सिर पर एक टोपी थी, टोपी और वहाँ बैठा रखा हुआ था। जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने उससे पूछा, वो जो स्त्री थी वो स्वीप की भंगी जिसको कहते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस टोपी में क्या ले जा रही हो, तो मैंने कहा महाप्रसाद है। जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि अच्छा हमें भी थोड़ा दे दो। उस स्त्री ने दे दिया। वृंदावन अमरना में पूरे ब्रजमंडल में शोर मच गया कि बाबा सिद्ध बाबा ने ये उन्होंने क्या कर डाला। समाज जुट गया, सभा आ गई और बाबा जी से खुश होकर होने लगे। बाबा ने कहा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा आपने क्या कर डाला, क्या हो गया, आपने धंधे की टोपी में से महाप्रसाद खा लिया। तो बाबा जी ने कहा वो भंगन की मुझे बताई है। फिर कौन थी वो? बोले वो तो द्वारका में एक पट्टानी थी जो वृंदावन के भावों को लेकर यहाँ आई थी। तो हम जिस स्त्री का भजन करना चाहते हैं वो महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा के माध्यम से बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीव जो है उसका मुख्य तत्व है वो है हरि नाम उपासना, मुख्य तत्व है भगवान श्री गौर की रस उपासना और दूसरा है नाम उपासना। हमारे शंकर गोस्वामी जिस तरह से ग्रंथ लिखने में व्यस्त रहे और संख्या पूर्वक और बिना संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन करते रहे और सारे जगत में जो महावदन्यता भाव से ग्रंथ हमें दे गए वो भी श्रीमद महाप्रभु की कृपा से है। जब वो श्री सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो उनके शरीर में घाव है, कुष्ठ जैसा रोग हो गया है, फिर भी महाप्रभु उनसे गले मिलते हैं। तो उन्होंने वैष्णव करके हमें शिक्षा दी और भीम भीता का पाठ पढ़ाया। मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ और तुम अब जगन्नाथपुरी चले जाओ। तुम्हारे द्वारा रचा गया जो गीत गोविंद है, मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका रचा स्वादन करूंगा। सुश्रीमद महाप्रभु ने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई थी कि अद्वैताचार्य ने जो महाविष्णु तत्व है या किसी दृष्टि में सदाशिव तत्व है, उन्होंने महाप्रभु जी को नीचे बुलवाया, अभिनय करवाया, भूतल पर बुलवाया। तो अद्वैताचार्य के साथ जो वो उनको गुरु मान गए थे, तो अद्वैताचार्य का कि मेरा अपराध हो जाएगा, श्रीमद महाप्रभु मेरे जैसे दीन दीन व्यक्ति को यदि गुरु बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तब श्री अद्वैताचार्य ने जान पूछ कर वेद उपनिषद इत्यादि का माया परत जो वैष्णव तत्व से वैष्णव जो विषय है उसका प्रतिपादन करने लगे। श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि अब यह रुकेगा नहीं और नारा नारा के जरूरत पूर्ण करने लगे। इतना ही नहीं, जब श्रीमद अद्वैताचार्य की कृपा से उनके भाई विष्णु चले गए थे और शची माता उन पर क्रोधित हो गई थी, तो महाप्रभु ने अपनी माता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध करके मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें श्रीमद अद्वैताचार्य के चरणों में अपनी क्षमा याचना करनी पड़ेगी। श्रीमद महाप्रभु बाल बाल में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे गंगा के किनारे विभिन्न प्रकार से लीलाओं का आस्वादन कराते रहे। कभी उन्होंने ब्राह्मण के साथ बार बार भोजन करके उसको आह्वादित करते रहे। श्रीमद महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति के अवतार हैं, प्रतिमूर्ति हैं। श्रीमद महाप्रभु जब गीत गोविंद का रसा स्वादन करते थे जगन्नाथपुरी में, गीत गोविंद क्या है, भगवान जगन्नाथ वे के आवेश में है। श्री मन महाप्रभु वृंदावन में वेह की आशा के रूप में, जगन्नाथपुरी में वेह की आशा के रूप में है और वही विरह श्री गीत गोविंद में हमें मिलता है। गीत गोविंद का रसा स्वादन करते करते महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। उनकी जो भावना है उनका जो चिन्हबल है वो उसमें डूब जाते थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। उनके जो संपूर्ण सेवक थे संस्थान मगर यद्यपि राय रामायण इत्यादि के साथ उन्होंने उन्हीं को सम्मान दिया कि श्री राय जी आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि भक्ति का तत्व क्या होता है। इसी तरह से वो सर्व काम होते थे साथ ही उनको सम्मान, तो सबको सम्मान देने की जो प्रथा है वो भी श्रीमद महाप्रभु से चली आई। श्रीमद महाप्रभु ने श्रीराम की भावना जन्म लेकर हम सबके अपराधों को भंजन करने का रास्ता बताया। तो जिस गोविंद ने महाप्रभु आस्वादन किया करते थे, जिस गोविंद के लिए कहा जाता है कि जिसे पढ़कर ऐसा होता है कि हे शक्कर तुम कहीं और छिप जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हे मिश्री तुम्हें तो मिठास है ही नहीं, हे सुंदरी ये अधर तुम्हारे अंदर तो मादकता है ही नहीं, हे द्राक्षा तुम्हारे अंदर ऐसी कुमारिता कहाँ से आएगी। ऐसे श्री गीत गोविंद का अपने आने से पहले महाप्रभु रचना करा रहे थे। उसका जो मंगल गीत है शुद्ध कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन मार जय जय देव हरे, तो उनकी उपासना कैसी है, उनकी उपासना है शुद्ध कमला कुछ मंडल श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठी है और श्रृंगार रस की लीला चल रही है। उसी लीला से उनका प्रथम गीत शुरू होता है और स्वयं नंद बाबा आकर उसकी सुकृति देते हैं और कहते हैं कि हे राधे ये कल्प के बंदे मैंने आवाज करना शुरू कर दिया है, शुभ और सारी हो रही है, उठो अब तू अपनी घर की ओर चली जा। वो शिरा था जो हमारे बॉडी में गर्म रहा है, रसद तू परिया हो परिया में ही रस है, उसका महाप्रभु ही ने स्थापना करता है। उन्होंने जो नाम दिया उसमें कोई विधान नहीं रखा, हंसते बैठते सोते जाते हर समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण और इतना ही नहीं हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बताया। श्री जी गोस्वामी के अनुसार, श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी के अनुसार, श्रीमद विश्वाचार्य ठाकुर के अनुसार हमें अर्थों के आनुवाद में भजन करना चाहिए। गंभीर लीला में श्रीमद महाप्रभु खोए रहते थे, धीर समीरे यमुना की देवसती बने मनवा
बहुत सुंदर गवेषणापूर्ण आप श्रीमान श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ बोलेंगे।
I pay my humble obeisances in the location of my Paramahansa Guru Pada. Vishnupad, Vasudeva Satyasena Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, and Om Vishnupad, Kulibhajaka Charya Varya, Vasudeva Satyasena Bhaktivedanta Swami Narayana Swami Maharaj. After that, I came out of these senses, the lotus feet of my spiritual grandsire, Nitraya Krishna Vishnupad, Sri Bhaktivedanta and Vasudeva Goswami Maharaj, and Nitraya Krishna Vishnupad, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj. I pay my obeisances for Vaishnavis and Vaishnavis, headed by Kuta Vishnu Acharya. Srila Buddha ordered me to speak something about Srimati Chaitanya Mahaprabhu. In this we are discussing about Sri Chaitanya Mahaprabhu and Dham Parikrama. First of all, we have to know who has started this Siddhavati Dham Parikrama. Srila Nityananda Prabhu, he took Jiva Saipal and first did Navadi Parikrama. Before Jiva Saipal, no one did Parikrama of Navadi Dham. Under direction of Nityananda Prabhu, Jiva Sai did this. After that, for all Guru Vargas, they did Navadi Parikrama. Nowadays, we are doing under guidance of the path of Navadi Dham Parikrama. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he donates so many things to us. As before, all the spoken in our scripture, Santo Pankaya Navasa Saradu Bhadra Pintu Krishna Rakhaku Vasakuri Pravadu Bhavati. Krishna, the Yamasakun Krishna pain, and he distributes pain. To whom? He taken the Tantan for the Tripas, the tree. But who, to whom he distributed? He was his own associates, not to others. He never gave unqualified person. But what man would be? Who even not qualified? Man who make him qualified and distribute him Krishna pain. Man who is so generous, is mentioned in scripture, among the Ayu Prabhu, Nahiti Bhuvane, Krishna pain, Dharma, Jara, Guru Darasane. Siddhupan Mahan is so hard minded, even whoever will see him from far distance, Krishna pain will manifest in his heart. This is his one donation. Not only that, even whoever heard Mahaprabhu's name from different ways from far distance, they always heard from this and like this, all something that we have discovered by influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Manila Pushpanga Ramchandra came. He has bow and arrow, Krishna has this, and Mahaprabhu could have been armed. Mahaprabhu promised, in this incarnation, I will not kill anyone by praying, by giving prayer, was of the heart of others, like Jagai and Madhai. What Mahaprabhu did? When Mahaprabhu heard that Madhai hit Nityananda Prabhu, Mahaprabhu appeared there with his fist. Then Jagai and Madhai became scared. Nityananda catch on his feet, Prabhu. In this lifetime, in this incarnation, you promise you not kill anyone. So give to Nityananda this prayer, Mahaprabhu stop his chakra. So this is another donation. Moreover, when we do bhajan, after Sardhan Nishtar like in step by step, when we achieve in prayer, then Krishna will give darshan. When devotee took his darshan, he can faint. He said, oh, why I have so much beauty if my devotee could not taste it? Then Krishna mercifully caressed him. When he woke up again, having sense, Sri Krishna again became faint. Again Krishna told, oh, I am so beautiful, so much quality, still my devotee could not taste this. Then Krishna called his wife, sweet voice. After that he spread his bodily fragrance, but devotee could not catch up this thing at a time. But Mahaprabhu is so generous, Mahaprabhu is Odhagama Vigraha. Krishna is Prem Purushottam, Lord Ramchandra, Krishna Jiva Purushottam, Lord Ramchandra Madhava Purushottam, Sri Chaitanya Mahaprabhu Prem Purushottam. In at a time, he is giving the quality to get all his Krishna's Saundarya means beauty, Madhurya means sweetness, Sausar the sweet fire, and sweet fragrance of his body, all these. Devotee can, Sri Krishna can accept all these things without being faint. So Mahaprabhu Udhajya, when all this quality can along with giving this, this Mahaprabhu's kind of donation, Mahaprabhu's Udhajanmaya Vigraha. How we can get this? Only by this some Mahima Guru Seva. If we serve Guru Bhagavadma wholeheartedly, without any hypocrite, then we can get this. Why give us Guru Bhagavadma? It's an incarnation of Srimati Prananda Prabhu. And Nityananda is most generous person in this world. Mahaprabhu Maharana, but Nityananda Prabhu is more Varana than Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, the best of Chaitanya Lila, Vrindavan Das Prabhu, when he was describing about Nityananda's first time, he influenced so much. All the Chaitanya Mahaprabhu mentioned the glory of Nityananda Prabhu, not to Chaitanya Mahaprabhu. So, Kaviraj Goswami Pad had to made Chaitanya Chaitanya to God of Chaitanya Mahaprabhu, and he told, I am taking the remnant of Vrindavan Das Thakur that I am making about Chaitanya Mahaprabhu. So Guru Bhagavatma is more and more generous than Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Mahaprabhu came, we are there. Krishna came, we are there. Sri Ramchandra, we are there. No one could have put us here to bring in this divine. Only Guru Bhagavatma did this. So I return to Guru Bhagavatma. In one hand, Guru Bhagavatma is incarnation of or manifestation of Nityananda Prabhu. By the other hand, he is very near and dear to Srimati Ramachandrani. So he mentioned Radha Samukha Samsakti, Sakhi Sandra Nivasi, Tamam Sarvangande, and also Vigraham. Who is he? Is in his verse is mentioned Krishna Gandhaya Dhimahi. What is he? He is pleasing Sri Chaitanya Mahaprabhu. His name is Krishna Chaitanya. So Guru Bhagavatma in one hand having Sri Krishna Chaitanya. Other hand is having Sri Krishna. So Krishna Anandaya. Another hand is having Krishna Anandaya. Name is having Srimati Ramachandrani. So Radha Samukha Samsakti. Any man can serve Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Krishna. Without being teenager, none can serve Srimati Radhika. He mentioned in Chaitanya Chaitanya in Mokrali Ashram the 8th chapter. The result in Gopi Nanakasa, Divine Practice of Sri Srimati Radhika. So Guru Bhagavatma has told this all to us. This also is of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Moreover, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he, by his mercy, Chaitanya Mahaprabhu has narrated in Vyad Bhagavatam. The Gurukul Gurudev come in this world, advised by Srimati Radhika. She was Chaitanya Mahaprabhu that in Vyad Bhagavatam. He told when he sent to Sarup, in Swami mentioned Radha Adishta being advised or borrowed by Srimati Radhika, Sarup came to deliver Janasrama from this world. So Gurukul Prabhu, in one hand, his incarnation of or manifestation of Nityananda Prabhu, other than he came in this world by order of Srimati Radhika, because he is the incarnate, he acted Srimati Radhika. So if we serve Guru Bhagavatma without being hypocritical to hearted, then all these doctors, which give question to us, have learned from Nityananda Prabhu, will manifest in our heart. So, first of all, we have to serve Guru Bhagavatma. By his mercy, he will transfer this service attitude to Mahaprabhu. And Mahaprabhu, by Ishwar Mahaprabhu, in Sarvikar mood, and Mahaprabhu manifests in front of us, in front of Divine Kapil. She mentioned by our Pita Sacharya, Gaurakim or Asalayamade, Setarande Jagadude, Seraha Mahaprabhantaranga, Griya Nava Bhamete Thakke, Thakodanga Bhole Rake, Narottama Mageta Asanga. Who is that Sar Chaitanya Mahaprabhu? Then one day, when he Bhagavan will naturally fight with our mood, Mahaprabhu manifests in front of him in a divine capital. There will be no other approach. And if we attain mercy of Navati Dham, then we can attain mercy of Vrindavan Dham. So he mentioned about Acharya that without mercy of Navati Dham, Arahita Navaranam Vajakanti Mante, Narahita Navaranam Vajayi Vatune, Arahita Jeshuka Vajamata Raste, Narahita Jeshuka Matayana Krishna. If we do Arjuna Navaman means Vrindavan, Navati Dham, then we can get mercy of Vrindavan Dham. To be not mercy for not to bhajan of Navati Dham, Vrindavan is far far away from us. If we do bhajan of Jiyasuka means Brahmin boy, who is a Brahmin boy? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lord Krishna came in both dynasty. Lord Ram came in
Satya dynasty, but Mahaprabhu came in Brahmin dynasty. So whoever from Mahaprabhu is, then he can get Krishna Paramahamsa. If not so, then Krishna is far away from us. Mahaprabhu surrendered another dimension, he taught to his associates. Whoever served Chaitanya Mahaprabhu, even though especially in this Kali Yuga, after our profession, our soul will be divided in two parts. One is they will go to Navadvipam, they serve Navadvipam to Mahaprabhu, my other soul will go to Vrindavan and it starts to define properly. So, main key of this are to start to talk from being wholehearted and in the hypocrite. So, we can do serve or we can serve Mahaprabhu and defend the food simultaneously, then our life is successful. So, I am humble, faithful of the service and the service. Please bless me, then I can start to talk to eternally and the guidance of the service. Hare Krishna.
Very good. Excellent. Now,
Jara Harinam Dikhatyana Namika Dachan, Rasubal Saha Brahmachari Nikat, Maradeshita Tandari Nam Nikhyadin, Gaur Purnima Din, Narasana Harinam Dikhat, Pumushanagwe. Jiva Harinam Dikhatyari Nam Nikhat Chate, कृपया हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर सुबह सबूत के पास नाम लिखा दें। कोई बार फोन पर रजिस्ट्रेशन है देखकर रजिस्टर जन ने सुबह का ब्रह्मचारी का रजिस्ट्रेशन काउंटर फोन पर अनाउंसमेंट दून जगह की वेरी बिग प्रोग्रामिंग होएगा फ्रॉम 28 मार्च टू 1 अप्रैल सो ऑल डिवाइड ऑल डिवर्स इनवाइटेड दे आर नोएगा कमिटी अरेंज इंक्लूडिंग एलर्जी हरे कृष्ण
of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When we heard from so many exalted and senior Vaishnavas, deep and varied realizations about these remarkable teachings. It's humbling and overwhelming, and I had many different things planned in my life. At the last minute, hearing Srimad Bhagavaraj's speech, something completely different came into my life. And I thought that one of the specialties of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu was his display and his emphasis on the principle of Guru Nishtha and understanding bhakti and developing love of Krishna, Radha Krishna, by following in the footsteps of all of our previous acharyas, Mahajana, Yenkatasa, and that. Our Srila Prabhupada was very fond of the story of Mahaprabhu that he would tell quite frequently. That one time a very learned Vaishnava came to Mahaprabhu and he said, I have written a commentary on Srimad Bhagavatam that is actually surpasses that of Sridhar Swami. She not only comes to me at Bhagavatam as the source and as the foundation and the most exalted and illuminating commentary. But this personality had said that, oh, my commentary has surpassed Shri Goswami. Shri Kanya Mahaprabhu came to him and said, anyone who affects Swami is indicating Shri Goswami, but also Swami also means husband. Anyone who affects their husband or a great authority, I consider a prostitute. Okay? And whatever they write, I don't consider them. So everything that we know, all that we do in our bhakti, must be predicated and based on the example and teachings of our acharyas, specifically our own gurudevas and our shiksha gurus. Now, since I came into this sangha, I have tried desperately to understand the Mahavishnu and the moods of seva of our beloved Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. And it's only recently that I've come to understand that if you want to please Srila Gurudev and really enter into his heart and know his mood, you must also understand and know the mood of his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj. And we are blessed with many outstanding publications that we feel that mood, particularly the Harmless Magazine and something in the back of our songbook, which Upadesh Bhagavati, our Srila Bhakti Pragyan Keshe Maharaj. Now how does this relate to the teachings of Mahaprabhu? Because Mahaprabhu's teachings and his movement of bhakti and how he developed it is revealed through the writings and example of our acharyas. Now, what did Mahaprabhu do in order to execute his bhajan, in order to perform bhakti himself? We're hearing every day about this wonderful exalted philosophy, but what did Mahaprabhu actually practice? What was his example? Well, every day when we go on parikram, at each spot, if you read the Navadvipa Mahatmya of Srila Bhakti Vinodhakura, they always say how Mahaprabhu came to this spot. And at this spot, today for instance, he went to Vladhakura. And Srila Nityananda Prabhu is related to Srila Jiva Goswami. Here Mahaprabhu came during the midday. And during the midday, he was absorbed in the mood of Krishna's Ashtakada Leela. And he was chanting ecstatically with his associates. Another time we read in the psalm of Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivinoda Rengo, about Mahaprabhu. What does he do on Ekadasi? During Ekadasi, from the very early morning until just 3 hours before sunrise, he goes out and ecstatically chants in Nanda Sankirtan from one point to the next to the next. And factually, so much of Mahaprabhu's activities during his Navadvipa pastimes were filled with this Nanda Sankirtan, this wonderful public congregational chanting of the holy names of the Lord. Srila Gurudev himself has emphasized over and over that there are two things, there's book distribution and Nanda Sankirtan. These forms of preaching are the left and right hands of our movement, of the spreading of Krishna consciousness. And this was the actual example of Mahaprabhu. When Mahaprabhu was talking to Prabhasananda Saraswati, he said, when they said, why don't you study Vedanta? Why don't you act like other sannyasis? Why aren't you brave? Why are you running around chanting like a sentimentalist, like a madman? He said, my spiritual master considered me a great student. He considered me unqualified to study Vedanta. So he has given me this mantra, and he told me to chant this day and night. And I found that by chanting this mantra, I became like a madman. And I asked my spiritual master, what kind of mantra have you given me? My spiritual master was very pleased. So, not that we are not meant to study, not at all. But this study will not take effect unless we put into practice the principles. Now, I just want to read one little thing. In his own Upadesha Avalishya, Bhakti Siddhartha Saraswati Thakura has said in number 6 that, and he received this instruction from Srila Bhakti Vinod Thakura, that to publish and distribute transcendental literature and to preach Hare Krishna through non-hatha programs still real service to Sri Ram Mayapur. We have come to Sri Ram Mayapur, Srinath Gurudam, to soak up the mood of service, to try to understand this Leela, to enter into this mood. But how are we preparing ourselves? You don't just come here without any preparation. That preparation is daily from our time away from the Dham, by chanting, by preaching, by spreading this Krishna consciousness. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, to print and publish, distribute transcendental literature, and to preach through non-mata programs, this is real service to Srila Mayapur. By this, we can taste this mood. Every day when we are supposed to go out, what are we doing? We're supposed to follow in the footsteps of Mahaprabhu. That doesn't mean just trudging along, talking with each other, although sometimes we do, we're catching up, and our kids are probably see far ahead when we get here. But actually, the real benefit comes by being right by that cart, right by that zebra, right by that jumper, and enthusiastically chanting, There is a group who always come into and come to the association of the bhaktas, and they hear about chanting, they hear about all the principles of devotional service, but there are always some who have a tendency to go and want to do solitary bhajan, to go out to Ramakund and to enter into some deep meditative state, chanting Hare Krishna and thinking about Radha and the gopis in Ramakund. I want to enter into my bhajan deeply. But, according to Srila Bhakti Vrindavan Krishna Maharaj, this is not the mood of Mahaprabhu. He says, did everybody read this? Do you know this book? Do you know where this is in the song book? Have you read this? You should read this. You should study this. He says that first of all, the Anga of Bhakti, known as Kirtan, is the best and most complete limb of Bhakti. But how to perform it? He says to speak Hare Krishna always and everywhere, and being absorbed in speaking about services related to Krishna is real silence performing preaching Hare Krishna always and everywhere is real Hare Kirtan. And not to go off into the solitary bhajan of the five worshipers in Radha Kund, but to stay in the association of devotees doing group preaching, group sankirtan. This was the mood of Mahaprabhu and his associates. There may have been some very advanced devotees, such as Haridas Thakur, who spent a great deal of time in solitary bhajan, but they also spent a great deal of time in the association of Mahaprabhu and the kirtan party. So, this was my small realization, this small thing I wanted to share. Thank you very much. Please, if you have any thoughts or questions,
very good. Qualche programma announce quale.